यह प्रवचन श्रीमद् भागवतम के स्कंद एक अध्याय दस श्लोक संख्या 13 पर श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर नई दिल्ली में श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला भाला धारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय चेते निमिषे अक्षे तम तम अनुद्रुत चेतसा विक्षांत स्नेह संबद्ध विचलस्तत्र तत्रः ॐ ज्ञानं वेदान्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं साधितां येन भूतले स्वयं रूपकदामयाम् ददाति स्वापदान्तिकां हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्ता कांचन गौरागी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिके जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सहस्रनि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण सर्वे ते निमिषे अक्षय तम अनुद्रुत चेतसा विक्षंत स्नेह संबंध विचलस्तत्र तत्रः। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है उन सबके हृदय अनेक आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। तो जब यहाँ कहा जा रहा है उन सबके हृदय, तो इससे वर्णन है भगवान के भक्तों का जिनके विषय में आपने 9वें और 10वें श्लोक में पढ़ा। भगवान युधिष्ठिर से विदा ले रहे थे और भगवान द्वारका की ओर जा रहे थे। जैसे वो तैयारी कर रहे थे द्वारका जाने के लिए, सुभद्रा द्रौपदी कुंती उत्तरा गंधारी ये सब जो सहदेव भीमसेन सत्यवती ये लगभग बेहोश हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक पल के लिए रहना भी लगभग असंभव था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो ये भक्त थे रिश्तेदार थे इन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कृष्ण सभी जीवों के लिए आकर्षक है। तो सभी जीवों के लिए असली आकर्षक व्यक्ति कौन है? परम भगवान। और माया में प्रभाव, माया के प्रभाव में आकर हम कई दूसरे व्यक्तियों को वस्तुओं को के प्रति आकर्षित होते हैं, पर जो भगवान के भक्त हैं वो आकर्षित रहते हैं परम भगवान के प्रति। क्यों? क्योंकि वे सभी अमर जीवों के अग्रणी हैं। और आगे कहा गया है एकमात्र वे ही अमरों के अमर हैं। कथा उपनिषद में कहा गया है नित्यो नित्य नाम चेतन चेतना नाम एको भावनाम विदाति कामाम। तो हम जीव हैं और भगवान हम नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं, पर वो जो नित्य है वो सब व्यक्तियों को संभाल रहा है। तो परम भगवान जो हैं वो सर्व आकर्षक हैं और वो ही सभी जीवों के अग्रणी हैं। भक्त जो है ये स्वीकार करता है कि परम भगवान ही इस सृष्टि के कारण हैं और वो ही हर व्यक्ति को संभाल रहे हैं, और जो प्रकृति है वो भी चल रही है उनके इशारे के अनुसार, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, माया दक्षिणा प्रकृति सुयते सा चाचर। ये जो प्रकृति है ये चल रही है किसके इशारे पर? मेरे इशारे पर। जब हम शास्त्रों की शिक्षा का पालन करते हैं तो प्रकृति हमारा साथ देती है, और जब हम शास्त्र के विपरीत कार्य करते हैं तो प्रकृति फिर सहयोग नहीं देती। जैसे आप भागवत में पढ़ते हो, महाराज वीणा के समय उन्होंने हर प्रकार का यज्ञ जो है रुकवा दिया था समाज में, जिसका ये परिणाम हुआ कि जो आवश्यकताएं हैं वो समाप्त हो गई। और जब उनके पुत्र पृथ्वी राजा बने, उन्होंने पूरी प्रजा को ये आदेश दिया कि तुम भगवान के नामों का उच्चारण करो, और जैसे उन्होंने उच्चारण किया जो आवश्यकताएं हैं वो भी प्राप्त होने लगी। और इस विषय पर भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, अन्नाद भवंती प्रजनन अन्न संभव। अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, और वर्षा की प्राप्ति होती है कैसे? यज्ञ के द्वारा। जैसे आज की स्थिति में आप देखते हो भारत के कई स्थानों में वर्षा नहीं आई, कम बारिश आई है, तो ये सब है परिणाम पापों का। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान जो सर्व आकर्षक हैं वो ही सबके अग्रणी हैं, पर हम नित्य हैं, परम भगवान भी नित्य हैं, पर अंतर यह है वो नित्य सबको संभालते हैं। जैसे भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैंने ज्ञान दिया था सबसे पहले सूर्य के देवता वेवास्वान। तो अर्जुन ने पूछा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि आपने विश्वास ये ज्ञान दिया था सूर्य के देवता वेवास्वान को, जबकि वो आपसे पहले आए थे। तो भगवान ने कहा बहुत बहुत जन्म तुमने और मैंने लिए, पर अंतर क्या है? क्या अंतर है? मैं सब जीवों का स्मरण कर सकता हूँ और तुम नहीं। तो कथा उपनिषद में बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नित्य परम भगवान जो हैं वही सबको संभाल रहे हैं। आगे प्रभुपाद जी ये उपाय देते हैं शांति तथा समृद्धि प्राप्त करने के लिए। बहुत एक संसार में शांति की चर्चा भी लोग करते हैं और समृद्धि भी सबको चाहिए, पर इसका साधन क्या है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि ये संभव हो सकता है जब हम परम भगवान से हमारा संबंध जोड़ें। और तात्पर्य के अंत में एक समझाते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम हमें ये शिक्षा दे सकता है, प्रशिक्षण प्रदान करता है, क्या किस प्रकार से आप भगवान के शरणागत हो सकते हो। जैसे कि भागवतम में कहा गया है, नस्तप्रेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया, भगवत यतमा श्लोके भक्ति भावती नैस्तिकी, कि अगर हम नियमित रूप से भागवतम को सुनेंगे तो इसके द्वारा क्या होगा? भक्ति की भावना जो है हृदय में स्थापित होगी और जो मैल है काम क्रोध लोभ इत्यादि के रूप में वो निकलेगी। पर ये भक्ति की शिक्षा जो कि हमें भागवतम के द्वारा प्राप्त होती है, उसका मूल उपदेश यह है कि हमें सदा भगवान की सेवा में जुड़े रहना चाहिए। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम माया रूपी विचारों से मुक्त हो सकते हैं अगर हम भगवान की संगत प्राप्त करने का प्रयास करें। और भगवान की संगत प्राप्त करने का प्रयास क्या है? इस तात्पर्य में, इस विषय में भी हमें ज्ञान मिलता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये संभव हो सकता है अगर हम भगवान के नाम यश रूप और गुणों, हम नाम यश रूप और गुणों की संगत लें। तो नाम यश गुण और उनका रूप, नाम, नाम का अर्थ है उनके दिव्य नाम। भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि हे भगवान, आप इतने दया दयालु हो कि आपने अपनी पूरी शक्ति डाली है किसमें, इन दिव्य नामों में। नामा चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रास विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो भिन्न अथवा नाम नामिना। भगवान के जो नाम है चिंतामणि परस पत्र के समान है, और उन नामों में भिन्न अथवा नाम नामिना, उन नामों में भगवान में कोई अंतर नहीं। छत्तीसगढ़ में आप अजामिल की कथा पढ़ते हो और उस कथा के दुर्यार अब ये भी पढ़ते हो कि ज्ञान से अज्ञान से कोई भी अगर भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करेगा तो इसका उसे लाभ ही पहुंचेगा। तो हम जब हरि नाम का उच्चारण करते हैं तो हम भगवान की संगत प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे तात्पर्य में कहा जा रहा है प्रभुपाद के द्वारा कि यह साधन है माया रूपी विचारों से बचने के लिए। और इसी विषय में श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है, शिन्मता स्वाकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयांतस्तो अबद्रानी, जो हृदय में जो मैल है विदुनति सुरात सता, वो निकल सकती है भगवान के नामों के उच्चारण से। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करें। ये प्रयास नहीं रहना चाहिए कि सोना माला कोटा जब समाप्त हो गया तो उसके बाद और नाम का उच्चारण करना पाप है। हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि हम निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करें। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर हम ये योजना बनाएंगे कि हम निरंतर उनके नामों का उच्चारण करें फिर आप सोलह माला अच्छी तरह कर पाओगे। पर अगर आप ये सोचोगे कि केवल हमने सोलह माला करना है उससे अधिक नहीं, तो फिर सोलह माला भी ठीक रूप से आप नहीं कर पाओगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि माया रूपी विचारों से जीव मुक्त हो सकता है भगवान की संगत प्राप्त करके। और ये संगत हम प्राप्त करते हैं उनके नाम यश रूप और गुणों की संगति के द्वारा। तो प्रयास रहना चाहिए नामों का उच्चारण करते रहना। और जैसे चैतन्य चतुर्मृत में कहा गया है, भव जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धाना, कि हम अगर दस नाम अपराधन से बचते हुए नामों का उच्चारण करें तो इसका अधिक प्रभाव होगा। फिर भगवान के यश, भगवान शब्द उनके लिए उपयोग किया जाता है जिनमें कि छह प्रकार के गुणों असीम मात्र, ऐश्वर्य समाग्रस्य वीर यशाश ज्ञान वैराग्यावश्य सन्न भागा इतना। भगवान का स्वरूप और भगवान के गुण, भगवान का जो रूप है इसे हमें भौतिक नहीं समझना चाहिए। ये जो भौतिक तत्वों के मिश्रण से बनता है, जब रूप की स्थापना की जाती है शास्त्रों की विधियों के अनुसार और जब इसकी उपासना की जाती है विधियों के अनुसार, तो इस रूप में और भगवान में कोई अंतर नहीं। इसीलिए भक्त भगवान की आर्चा विग्रह की उपासना करते हैं। भगवान इस कलियुग में अवतारित होते हैं उनके नाम के रूप में और उनके आर्चा विग्रह के रूप में। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये तो पत्थर की मूर्ति है या लोहे की मूर्ति है, हमें स्वयं ये समझना चाहिए कि परम भगवान हैं इस आर्चा विग्रह में। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे, बड़े पोस्ट ऑफिस का और एक डाक के डब्बे का। आजकल तो डाक के डब्बे नहीं देखते हमें कोने कोने में, पर पहले होते थे कोने कोने में डाक का डब्बा, वहाँ भी चिट्ठी डालो तो चिट्ठी पहुँच जाती थी अपने स्थान पर। तो भगवान के जो आचर विग्रह का रूप है और भगवान में कोई अंतर नहीं। फिर भगवान के गुण, भगवान के आचर विग्रह के संबंध में कई प्रसिद्ध लीलाएं हैं। चैतन्य चैतन्यमृत में आपने पढ़ा है साक्षी गोपाल की कथा, किस प्रकार गोपाल के विग्रह ने उस ब्राह्मण की इज्जत बचाई। फिर वृंदावन में आप सबने राधा रमन जी का दर्शन भी लिया होगा। तो राधा रमन जी की जो मूर्ति है, ये पहले थी एक दामोदर शालिग्राम शिला। एक दिन एक बड़े धनी व्यक्ति आए जिन्होंने महंगी भेंट अर्पण की गोपाल भट्ट गोस्वामी को। तो सोच रहे थे मैं क्या करूंगा इन गहनों के साथ, रेशम की साड़ियों के साथ, अगर मेरे पास मूर्ति होती तो उनके लिए मैं वस्त्र भी बना पाता। थे सोचते सोचते सो गए, और सुबह जब जागे तो उन्होंने देखा वही दामोदर का शालिग्राम ने भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लिया था। तो हमें भगवान के रूप की भी हम संगत लेते हैं, उनको प्रणाम करके और भगवान के आर्चर विग्रह की सेवा करके, भगवान आर्चर विग्रह का श्रृंगार करके, उनके लिए प्रसाद बनाकर, उनके लिए कीर्तन करके, उनके लिए नाच कर गा कर इत्यादि। फिर भगवान के गुण, भगवान के गुणों की गिनती कोई कर नहीं सकता। पर जब भी ब्रह्म संहिता और भगवत गीता में भगवान के गुणों का वर्णन प्राप्त होता है, जैसे कि ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। अद्वैता, उनके देह और आत्मा में कोई अंतर नहीं। अच्युता का क्या अर्थ है, जो कभी गलती नहीं करते, इनफेलिबल। अनंत रूपम, वह अपने आप को अनंत रूपों में प्रकट करते हैं, मत्स्या वराह नरसिंहदेव राम लक्ष्मण चैतन्य महाप्रभु। फिर अद्य पुराना पुरुषम नव यौवनम च, अब हो सबसे प्राचीन पुरुष, पर आप देखते हो कैसे युवक के समान। हाँ, फिर अंगने यस सकलंदर वृत्ति मानती, वो किसी भी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर सकते हैं, ये भी भगवान का एक गुण है, किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य। आप और हम एक अंग से एक ही कार्य कर सकते हैं, जैसे अगर आपने खाना है तो आपको मुंह के द्वारा ही खाना पड़ेगा। हाँ, पर भगवान कैसे खाते हैं, आंखों से और खानों से। हाँ, आप जब भगवान के चरण कमलों में प्रसाद रखते हो तो साथ में मंत्रों का उच्चारण भी होना चाहिए। ये नहीं कि प्रसाद रख दो तुलसी के पत्ते के साथ और फिर 5 मिनट बाद उठा लो, जैसे कि हमारे कई घरों में लोग करते हैं। हमें प्रसाद तैयार करते वक्त ये विचार रखना चाहिए कि ये प्रसाद तैयार हो रहा है किसके लिए, परम भगवान के। फिर भगवान के चरण कमलों में इन्हें अर्पण करते हैं और मंत्रों के साथ इनका उच्चारण करते हैं, और फिर भगवान नेत्रों से खा लेते हैं और कानों से, और उस खाने में भगवान की जो थूक है वो मिल जाती है, और फिर ये बन जाता है प्रसाद या भगवान की कृपा। कहा गया कि इस कलयुग में प्रसाद खाने से ही हमारी शुद्ध इंद्रियां जो है शुद्ध बनने लग जाती। जैसे कि जब प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की थी और उन्होंने रविवार का कार्यक्रम की स्थापना की, तो उन्होंने रविवार के प्रोग्राम में बहुत ही सुंदर प्रसाद का भी प्रबंध किया, हलवा खीर समोसा वगैरह। तो कई लोग आते थे सिर्फ प्रसाद खाने के लिए, पर वो इतने आकर्षित हो गए प्रसाद के प्रति कि अंत में वो बन गए भक्त। तो किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य भगवान कर सकते हैं। भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान हमें उपदेश देते हैं किस प्रकार उनका हम स्मरण कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, सोचे मेरे बारे में क्या कि मैं हर स्थान में उपस्थित हूँ, सबसे प्राचीन हूँ, मैं ही हर चीज का कारण हूँ। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा सर्व कारणम, वो ये हर चीज के कारण। फिर भगवान कलोक एवं निवसाति अकेलात्मा भूता, निवास करते हैं एक स्थान में, पर जब भी आप उनको अनुभव कर सकते हो हर स्थान में। फिर भगवान का एक और गुण ये है कि वो उपस्थित हैं हर एक हृदय में, हर एक हृदय में भगवान उपस्थित हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से राजनते। भगवान गीता में कहते मैं हरे के हृदय में उपस्थित हूँ, और हरे के हृदय में उपस्थित होकर भगवान इच्छा के अनुसार हमें बुद्धि देते हैं। जैसे भगवद गीता में इस विषय में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट अतः स्मृति ज्ञानम अपहानम च। तो अपहानम का अर्थ है भूलना और स्मरण का है याद करना। तो भगवान ही हमें भूलने की शक्ति देते हैं और उनका स्मरण करने की शक्ति देते हैं। ये निर्भर होता है हमारी इच्छा के अनुसार। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमें सदा भगवान के नाम यश रूप गुण और इसके अलावा भगवान की लीलाएं, भगवान की लीलाओं की भी कभी स्मरण करना चाहिए। भगवान की अनेक लीलाएं हैं और इन सब लीलाओं में हम क्या देखते हैं, ये जो लीलाएं हैं वो हैं बिल्कुल दिव्य। और भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म चा में जो यही समझ आए मेरा प्रकट प्रकट होना दिव्यम है, उस व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है, पुनः जन्म न विद्यते, फिर से उसे जन्म प्राप्त नहीं होता। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं, ये सब अद्भुत हैं। और जब आप भगवान की लीलाओं के विषय में पढ़ते हो तो देखते हो कि कोई साधारण व्यक्ति ना देवता इन लीलाओं की तुलना कर सकता है। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय भगवान ने अर्जुन को खास दिव्य नेत्र दिए, क्या देखने के लिए, उनके विराट रूप को देखने के लिए। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अर्जुन को विराट रूप देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो तो भगवान के सनातन साथी हैं, उन्हें पता है कि परम भगवान कौन है। पर उन्हें यह भी पता था कि भविष्य में ढोंगी व्यक्ति ये दावा करेंगे क्या कि वो भगवान के अवतार हैं, उनकी आप परीक्षा ले सकते हो, कैसे, ये पूछकर कि आप भी अपने विराट रूप को प्रकट कीजिए। तो भक्तों का प्रयास रहना चाहिए, भक्त माया रूपी विचारों से बच सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा भगवान के नाम रूप गुण और लीलाएं और यश का स्मरण करके। भागवतम में आप पढ़ते हो कि अर्जुन उदास हो गए थे जब उन्हें पता लगा कि भगवान ने अपने आप को प्रकट कर लिया है। फिर अर्जुन ने भगवान के गीता के उपदेश का स्मरण आरंभ किया, और जब उन्होंने भगवान के गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया तुरंत वो प्रसन्न हो गए और उन्हें ऐसे लगा कि परम भगवान उनके साथ उपस्थित हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि हम भक्तों को भी अर्जुन के समान जो कि गीता का उपदेश है उसका स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे भक्तों को प्रयास करना चाहिए रोज के लिए एक गीता का श्लोक चुन लें और एक भागवतम का श्लोक चुन लें, और सारा दिन उन श्लोकों को आप छोटे कार्ड में या कागज में लिख सकते हो और उस कागज को अपने जेब में डालो, तो जहाँ सारा समय सारा दिन जब भी आपको समय मिले उस संस्कृत का श्लोक और उसका अनुवाद का स्मरण करने का प्रयास करो। इसका क्या लाभ होगा, एक तो आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, दूसरा आपका मन भौतिक विषयों में भटकने से बचेगा। तो अगर हम माया रूपी विचारों से बचना चाहते हैं तो ये एक साधन है। तो संक्षेप में आप पिछले अध्यायों में पढ़ रहे हो कि जो भगवान के साथी थे उन्होंने भगवान को इजाज़त तो दे दी थी कि आप हस्तिनापुर से द्वारका जा सकते हो, पर वो खुश नहीं थे और उनके लिए एक पलक या एक क्षण भी भगवान की संगत के बिना रहना बहुत ही कठिन था। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कृष्ण भगवान जो हैं सब जीवों के लिए आकर्षक हैं और वही सब जीवों के अमर जीवों के अग्रणी हैं। तो प्रकृति जो है वो भी इनके उनके इशारे से चल रही है, और असली शांति प्राप्त करने का उपाय क्या है? परम भगवान की संगत में रहना, और उनकी संगत में आप निरंतर रह सकते हो, उनके नाम यश रूप गुण लीलाओं का सदा स्मरण करना, सदा चर्चा करना। जब आप उनका इनकी चर्चा करते हो तो इसको कहा जाता है कृष्ण कथा। तो कृष्ण कथा में हमारी रुचि बढ़नी चाहिए, और भौतिक कथा जैसे हम प्रजल्पा के नाम से जानते हैं उसमें हमारी रुचि घटनी चाहिए। फिर उसमें रुचि घटेगी जब आप कृष्ण कथा में पढ़ाओगे, और यह है ये श्लोक का निर्णय। और अंत में प्रभु जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवतम द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवतम को अगर हम सुनेंगे निम्रता के साथ भगवान के प्रतिनिधियों के द्वारा, तो प्रशिक्षण प्रदान करता है श्रीमद् भगवतम के किस प्रकार हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं। हरे कृष्ण।